الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں، یعنی بدھ کا جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم تسہیل بہشتی زیور میں سے حقوق والدین کا ٹاپک پڑھ رہے تھے. آج ارادہ تو یہ بن رہا تھا کہ اس کے بعد جو کتاب الوصیہ والمیراث ہے، وصیت اور میراث کے احکامات، تو ان جائے، لیکن اعلان بھی جو ہے وہ حقوق والدین کا ہی ہو چکا تھا کل جو میسج ڈالا گیا تھا گروپ کے اوپر، اور ابھی بھی یہی ارادہ بنا ہے کہ والدین کے جو حقوق اب تک ہم نے پڑھی ہیں کتاب میں سے، تو وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکس میں، ایک ڈفرینٹ یعنی ایک مختلف زاویے سے جو ہے وہ بیان کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ زاویہ کیا تھا کہ والدین کے حقوق کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں تو ان کا ازالہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے چند ہفتوں میں، جو ہم نے پڑھا ہے نا، تو اس کے اندر جو زیادہ فوکس تھا، جو زیادہ ایمفیسس تھا، دباؤ تھا، وہ اس بات کے اوپر تھا کہ والدین کے حقوق کی وجہ سے کسی دوسرے کے حقوق تلف نہ کیے جائیں، بلکہ ہر ایک کو اس کے حقوق جیسے جیسے ہیں، یعنی پروردگار نے متعین کیے ہیں، ویسے ویسے ادا کیے جائیں. اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کی ابتدا بھی والدین کے حقوق کی، جو عموماً آیات قرآن مجید میں آتی ہیں، جیسے کہ ابھی پڑھی گئیں، وہ بالوالدین احسانہ، اور ان کے سامنے جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرو، ہے نا، کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ ساری آیات جو ہیں وہ والدین کے حقوق کے ضمن میں کوٹ کی جاتی ہیں، یہی ہیں حقوق والدین کی آیات. لیکن حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس موضوع کو ان آیات سے شروع نہیں کیا تھا، بلکہ کون سی آیت سے شروع کیا تھا؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ بے شک تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں، جو مستحق ہیں، ان تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے، اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم کوئی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، تو عدل اور انصاف کے ساتھ تم فیصلہ کرو. ٹھیک ہے، تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ کانٹیکس تھا، اور پھر اس کے اوپر بڑی تفصیلی جو ہے وہ ہم نے ڈسکشن کری ہے. تو اب اس کو مکمل بھی کر لیتے ہیں کہ جو کہ عمومی طور پر حقوق والدین جب ٹاپک ہوتا ہے تو جو بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی پھر صفحہ نمبر 309 کے اوپر موجود ہیں، جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر شیئر کیا ہوا ہے. تو ابھی ہم وہاں سے پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد اگر باقی وقت بچا تو پھر ہم کتاب الوصایا والمیراث سے بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک، تو حقوق کا بیان، اس میں سب سے پہلے حضرت نے والدین کے حقوق ذکر کیے تھے. ان میں نمبر ون، سب سے پہلا حق، کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ اگرچہ ان کی طرف سے کچھ زیادتی ہو. ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ اگرچہ ان کی طرف سے کچھ زیادتی ہو. تو کچھ زیادتی کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ زیادتی کا مطلب ان کی کا یعنی کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کہ تمہاری ذات کے خلاف، اگرچہ کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تمہاری ذات کے خلاف اگرچہ وہ کچھ زیادتی کر رہے ہیں، پھر بھی تم ان کو نہ تو جسمانی تکلیف پہنچاؤ. ٹھیک ہے، نہ تو جسمانی تکلیف پہنچاؤ اور نہ ہی نفسیاتی تکلیف پہنچاؤ. ٹھیک ہے، جسمانی تکلیف تو الحمدللہ ابھی بھی معاشرے کے اندر بہت کم سننے میں آتا ہے، कि जिस्मानी तकलीफ माँ बाप को पहुंचाई किसी ने, अगरचे के अब वो दौर भी आ गया है कि माँ बाप को जिस्मानी तकलीफ यानी बाकायदा मारपीट भी शुरू हो गई है। मारपीट के भी वाकयात जो है ना वो कभी कभार सुनने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये आम राइज नहीं हुए हैं, लेकिन नफ्सियाती तकलीफ का तो बहुत ही ज्यादा आम है, जिसका जिसकी शक्ल क्या होती है कि उनको ताने देना, उनको जो है वो उनकी गलतियों का एहसास दिलाना, या उनको इस किस्म की बातें कहना कि आपने कौन सी बड़ी बात कर ली है जो आपने मेरी परवरिश करी है। तो वो तो सभी करते हैं, राइट, वो तो सभी करते हैं, सारे वालदैन करते हैं। तो आपने कौन सी बड़ी बात करी, ये नफ्सियाती तकलीफ पहुंचाना है, तो ये किसी सूरत जायज नहीं है, अगरचे कि उन्होंने आपकी जात के खिलाफ कोई ज्यादती करी हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी जात के खिलाफ कोई ज्यादती करी हो तो उनको नफ्सियाती तकलीफ पहुंचाना जायज नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वो किसी दूसरे के खिलाफ ज्यादती करें, किसी दूसरे के खिलाफ ज्यादती करें, जैसे आपकी बीवी के खिलाफ ज्यादती करें या आपके बच्चों के खिलाफ ज्यादती करें, ठीक है, तो उस वक्त आप उनकी इस बात में हाँ में हाँ नहीं मिला सकते, उस वक्त आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकते और उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। और फिर जब आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जब आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो फिर क्या होगा जी, जब आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, जब वो आपकी बीवी के खिलाफ ज्यादती कर रहे हैं, या खवातीन की क्लास है तो बीवी के खिलाफ ज्यादती की बजाय कहना चाहिए कि शौहर के खिलाफ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत बहुत ज्यादा होता है। ये दामाद को बहुत बुरा भला कहते हैं, दामाद को बहुत ज्यादा जो है वो जलील करते हैं, ऐसा भी बहुत आम है, ऐसा भी बहुत आम है, ठीक है। तो सिर्फ बीवी के खिलाफ ज्यादती नहीं करें, यानी बहू के खिलाफ ज्यादती नहीं करते, दामाद के खिलाफ भी बहुत ज्यादती करते हैं वालदैन, ठीक है। उसको हो सकता है उसके किसी खौफ की वजह से कि वो बेटी को तलाक ना दे दे, तो उसके मुंह पर नहीं करते, लेकिन उसके पीठ पीछे बहुत करते हैं, अपनी बेटी का दिमाग खराब करके रख देते हैं, राइट, उसको उसके शौहर के खिलाफ इतनी बातें सुनाते हैं, इतना उसको जलील करते हैं, इतना उसके शौहर को ताने देते हैं कि या तो वो शौहर के खिलाफ हो जाती है या उसके नफ्सियाती तौर पर वो बहुत मुतासर हो जाती है, ठीक है, और फिर उसके दिल में भी शौहर के बारे में बदगुमानी शुरू हो जाती है। तो दामाद के खिलाफ ज्यादती करें तो फिर आप क्या करेंगे, आप उनके हाँ में हाँ नहीं मिला सकते, आप खवातीन आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती अगर वो ज्यादती कर रहे हैं, और जाहिर वो उसको हक समझ करके ही करते हैं ना, अपना अपना हक समझ के करते हैं, और उसकी कोई ना कोई उनके पास उल्टी सीधी दलील भी होती है जब वो बेटियों के शोहरों के बारे में बेटियों को बुरा भला सुनाते हैं, कोई ना कोई दलील बना करके ही सुनाते हैं ना, तो वो तो हर बंदा ही अपनी मर्जी से कोई भी दलील बना सकता है अपने हक में। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, तो जब उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या होगा उसका नतीजा, उनको जिस्मानी तकलीफ पहुंचेगी या उनको जिस्मानी तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी, उनको नफ्सियाती तकलीफ पहुंचेगी, उनको नफ्सियाती तकलीफ पहुंचेगी जब आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगी, राइट, उनको नफ्सियाती तकलीफ पहुंचेगी तो फिर क्या करें, तो फिर आप उनको कहें आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं कुछ नहीं कर सकती, बेशक आपको नफ्सियाती तकलीफ पहुंच रही है तो मैं क्या करूं इसका, ठीक है ना। फिर वो आपको बुरा भला कहेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, क्यों बुरा भला कहेंगे, क्योंकि उनको नफ्सियाती तकलीफ पहुंच रही है, इस वजह से वो आपको बुरा भला कहेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा उन्होंने, आपसे ज्यादा ना फरमान औलाद कोई नहीं होगी उनकी नजर में, ठीक है ना, यानी नेट रिजल्ट इस कि वो उनको नफ्सियाती तकलीफ पहुंच रही है, ठीक है ना। इस नफ्सियाती तकलीफ के रिएक्शन में वो आपको बुरा भला भी कहेंगे, आपको नाफरमान औलाद भी कहेंगे, आपको इमोशनल अब्यूज भी करेंगे, तो अब आप क्या करें, अब आप क्या करें, अभी भी आप उनको पलट के सुनाए नहीं, अभी भी आप उनको पलट के सुनाए नहीं, उनको बुरा भला अभी भी नहीं कहें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, जी जी और जी, जी जी और जी, ठीक है ना। ये अल्फाज हैं कि जिनके जो के ना हर बकवास का बेहतरीन जवाब होते हैं, हर इमोशनल अब्यूज का, हर बुरा भला का, हर जो है वो आपको नाफरमान तरीन औलाद कहे जाने का बेहतरीन जवाब क्या होता है वालिदैन के सामने, जी जी और जी, ठीक है, याद रहेगा सबको। आप पलट करके उनको उल्टा सीधा मत सुनाएं, आप उनसे एग्री नहीं कर रहे इसका मतलब ये कोई थोड़ी है कि अब आपको पलट के उनको उनको सुनाना भी है, उनको जवाब भी देना है, राइट। नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस जी 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 राइट, एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ाएं। अल्लाह ताला ने दो कान दिए हैं ना, और उनके दरमियान दिमाग दिया है, तो जो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं वो बड़े अच्छे से ये काम करते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से बाहर, ठीक है। तो उनको तकलीफ ना पहुंचाओ अगर से उनकी तरफ से कुछ ज्यादती हो, ऑलरेडी आपके इनकार करने की वजह से जो उनको तकलीफ पहुंच गई ना, बस इतना ही काफी है, उसके आगे कुछ अपनी तरफ से ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्या इन्होंने लिखा है डायरेक्ट मैसेज में कि उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए तावील करना चाहिए, उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए तावील करना चाहिए। तावील क्यों करेंगी, अगर गलत फहमी है तो उसको हकायक के जरिए से आप एक्सप्लेन कर सकती हैं, ठीक है। अगर गलत फहमी है, अगर आपके शौहर ऐसे नहीं है, तो हकायकों के सामने बयान कर दें अच्छे अंदाज में, लेकिन ज्यादा अच्छी तवक्को मत रखें उनसे, तवक्को मत रखें कि वो आपसे एग्री करेंगे, वो आपसे मोस्ट लाइकली एग्री नहीं करेंगे, तो इस वजह से जो है ना वो खामोशी ही इसका जवाब होती है, ठीक है। बहस, फिर वो बहस बन जाएगी, फिर वही उधर से वो बोल रहे होंगे, इधर से आप बोल रही होंगी, और एक खामखा की एक जंग हो रही होगी घर के अंदर, तो जंग की तो कोई जरूरत नहीं ना, कोई उसको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसको अवॉइड करें और जी 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 से काम चलाएं। अच्छा, शौहर वाकई अगर आपके बुरे हैं भी ना, तो भी जो है वो उनको एग्री करने की, देखें ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, लेकिन याद दहानी कराना हमारी जिम्मेदारी है कि औरत के ऊपर शादी के बाद उसका सबसे बड़ा हक जो है वो वालिदैन का नहीं होता है, वालिदैन का सबसे बड़ा हक नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। किसका होता है, ये मैंने नहीं कहा कि किसका होता है, शौहर का होता है, नहीं, अल्लाह का सबसे बड़ा हक होता है, रसूलुल्लाह का, उसके बाद अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह का हक होता है, और उन्होंने जो है वो शौहर का हक सबसे बड़ा बनाया। आज भी इतना कुछ दीन की हवाएं चलने के बावजूद भी यही है जी, वालिदैन का भी तो हक होता है भाई, होता है, लेकिन शौहर से ज्यादा नहीं होता, शौहर से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अभी तक यही नहीं समझ में आके दे रहा है कि जी वालिदैन का हक शौहर से ज्यादा नहीं होता, शौहर का हक ज्यादा ज्यादा होता है। वो क्यों होता है भाई, इसलिए नहीं कि शौहर आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है, या शौहर आपको अच्छी अच्छी जो है वो मिठाइयाँ ला करके देता है, या शौहर जो है वो आपकी दिल खुश करता है, इस वजह से नहीं शौहर का हक सबसे ज्यादा होता है। क्यों हक ज्यादा होता है, क्योंकि अल्लाह ने डिसाइड कर दिया, जिसने आपको बनाया है ना, जिसने आपको बनाया है, जिसने इस दुनिया के अंदर आपको भेजा है, उसने ये डिसाइड कर दिया है, ही इज द वन हु मेक्स द डिसीजंस, राइट। वो फैसला करता है किसका हक ज्यादा है, किसका हक ज्यादा नहीं है, हमको थोड़ी फैसला करते हैं, जो हमारे साथ अच्छा है उसका हक हमारे ऊपर ज्यादा है, जो हमारे साथ अच्छा नहीं है उसका हमारे ऊपर हक ज्यादा नहीं है, भाई ये तो अल्लाह का फैसला है ना, जिसने हमें और आपको बनाया है, ठीक है। तो बस जब है तो फिर अब करना है, उसके बदले में जन्नत मिलेगी मरने के बाद, दुनिया में भी कुछ ना कुछ मिलेगा, जन्नत में भी सब कुछ मिलेगा। फिर जब बीवियां शोहरों को कहती हैं कि आप अपनी अम्मी के पास मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर ये मुतालबा ही गलत है ना। नहीं, फिर ये मुतालबा गलत होना नहीं है, ये मुतालबा वैसे भी मतलब भाई वो सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो वो उनका गलत फेल है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, आपका गलत फेल है कि आपको जो है वो अपने वालदेन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए शोहर के खिलाफ, शोहर का गलत फेल है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके वालदैन के सामने, बस जो गलत है वो गलत है, इस वजह से नहीं कि वो नहीं कर रहा है इस वजह से मैं नहीं कर रही, या मैं कर रही हूँ तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा है। वो तो अल्लाह के फैसले है ना कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, ये किसी के एक्शन के ऊपर डिपेंड को थोड़ी करता है। मैं तो सपोर्ट करती हूँ तो फिर उनको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए, उनको वैसे ही सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, और आपको वैसे ही सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। बहरहाल तो पहला पॉइंट हो गया, लगता है ये टॉपिक तो खत्म नहीं होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि उनके साथ हुस्ने सुलूक और अदबो एहतराम से पेश आओ। ठीक है, तो इसके बारे में तो माशाल्लाह पीएचडी भी दो अदद की हुई है, एक पीएचडी भी नहीं करी हुई बल्कि दो अदद पीएचडी करी हुई है सबने हुस्ने सुलूक। लेकिन अमल अपनी सिचुएशन आती है तो फिर जो है ना वो हुस्ने सुलूक और अदब एहतराम भूल जाते हैं और जो है ना फिर वो बदतमीजी शुरू कर देते हैं। ठीक है, हुस्ने सुलूक और अदब एहतराम से पेश आओ, इसके तौर तरीके भी पता ही है कि उनके साथ एहसान का मामला करो, वो बेशक डिजर्व ना भी कर रहे हो तो भी उनके साथ जो है वो नरमी के साथ पेश आओ, बदतमीजी ना करो, ताने ना, कितनी दफा इस बात को रिपीट करें, जी 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 का मामला करो उनके साथ, जी 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 का। अच्छा, जायज कामों में उनकी पूरी पूरी अताअत करो। ठीक है, जायज कामों में उनकी पूरी की पूरी अताअत करो। मसला सारा ये है कि हमारी जहालत की इतनी इंतहाई हो चुकी है कि हमें जायज नाजायज का पता ही कोई नहीं होता। ठीक है ना, तो इस जुमले के ऊपर कोई एतराज नहीं है, इस जुमले के ऊपर कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस लफ्ज के ऊपर बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है कि जायज होता क्या है और नाजायज क्या होता है। ये तो इल्म के बगैर हासिल नहीं होगा, वरना फिर वही होता है अजम्पशंस। ठीक है ना, अब आजकल ये थीम चल पड़ा है हमारे यहाँ कि अजम्पशंस होते हैं ना, ASSUMPTION, तो उसका जो असल वर्ब है वो है अज्यूम, अस्यूम, कुछ लोग अस्यूम कहते हैं। ठीक है, तो अस्यूम का मतलब क्या होता है कि यू मेक अ खोता आउट ऑफ यू एंड मी, यू मेक एन एस आउट ऑफ यू एंड मी, एस मतलब खोता, खच्चर को अंग्रेजी में एस कहते हैं। ठीक है, गंदे लोग तो फिर गंदी बातें करते हैं, हम क्यों करें गंदी बातें, बस खच्चर को कहते हैं एस। ठीक है, पंजाबी में उसको आप खोता भी कह सकते हैं, वैसे गधे को खोता कहते हैं लेकिन खच्चर को भी खोता कहें, हमारी मर्जी। ठीक है, तो एज्यूम करना भाई मेरे गिर जो है वो टॉक्सिक लोग रहते हैं तो मैं सब्र करती रहती हूँ उन टॉक्सिक लोगों के खिलाफ, भाई कैसे आपने फैसला कर लिया कि आपके गिर्द रहने वाले लोग टॉक्सिक हैं और आप खुद टॉक्सिक नहीं है? जी मैंने अज्यूम किया हुआ है, राइट, कि मैं ही, जाहिर सी बात है मैं ही नेक हूं, मैं ही नेक परी हूं, और बाकी सारे लोग जो है वो जो मेरी मर्जी के खिलाफ काम करते हैं वो टॉक्सिक लोग हैं। ठीक है ना, ये लफ्ज बहुत ज्यादा फेमिनिज्म के दौर के अंदर ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो मर्द जो है वो पसंद ना आए वो टॉक्सिक हो जाता है, राइट, जो लोग पसंद ना आए वो टॉक्सिक हो जाते हैं। ये आजकल अमेरिका से शुरू हुआ था, पाकिस्तान तक भी पहुंचा हुआ है ये वाली टर्मिनोलॉजी, टॉक्सिक वाली टर्मिनोलॉजी। तो भाई ये तो आपका गुमान है ना, जिसको अंग्रेजी में कंजेक्चर कहते हैं, कंजेक्चर है ना, बस एक जोम है कि मैं अच्छी और दूसरे बुरे। ठीक है, पता होता कुछ नहीं है, कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छी और दूसरे बुरे? भाई वो तो इल्म से पता चलेगा ना, इल्म से, राइट, क्या जायज है क्या नाजायज है, जो जो नाजायज काम कर रहे हैं वही बुरे हो सकते हैं ना, और जो जायज काम कर रहे हैं वो अच्छे हैं। अब हु डिसाइड्स कौन जायज है कौन नाजायज, कौन सा काम जायज है कौन सा काम नाजायज है, राइट, कोई फलसफी डिसाइड करेगा, कोई जो है वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डिसाइड करेगा, किसी मुल्क का जो है वो हाकिम डिसाइड करेगा कि क्या कौन जायज है कौन नाजायज है, या परवरदिगार डिसाइड करेगा और परवरदिगार का रसूल बताएगा कि क्या जायज है क्या नाजायज है, क्योंकि परवरदिगार डायरेक्टली तो नहीं बताता हमें, परवरदिगार की आवाजें तो नहीं आती, हत्ता कि परवरदिगार की तरफ से कोई लिखी हुई तख्ती भी नहीं आती रहती हर वक्त कि जी ये जायज़ा, ये जायज़ा, 21वीं सदी में ये जायज़ है ये नाजायज़ है, परवरदिगार की तरफ से तो कोई पर्ची नहीं आती ऊपर से, तो रसूल ने बताया, राइट, रसूल बताता है कि परवरदिगार ने इसको जायज़ करार दिया, इसको नाजायज़ करार दिया, और फिर हर दौर हर जमाने में उलमाए कराम उसको समझाते हैं कि ये जायज़ है ये नाजायज़ है। अब जिस शख्स ने या जिस लड़की ने या जिस औरत ने जायज़ और नाजायज़ का इल्म ही नहीं हासिल किया हो, वो किस बुनियाद पर ये बात कर रही है कि जायज़ में अतात करनी चाहिए और नाजायज़ में अतात नहीं करनी चाहिए, उसको तो पता ही नहीं जायज़ क्या है क्या, उसको उसको तो पता ही नहीं नाजायज़ क्या है। ठीक है ना। तो बस अपने गुमान में अपने आप को जो है वो अल्लाह का वली और वलिया और न जाने क्या क्या समझ करके बैठे हुए होते हैं, और दूसरों को शैतान और मरदूद और फिरौन और हामान समझ करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना, जहालत की वजह से, खालिसतन जहालत की वजह से। ठीक, तो इसका इल्म हासिल करना ये हमारे ऊपर फर्ज है कि जी जायज़ क्या काम है और नाजायज़ क्या काम है, तब पता चलता है कि वालदैन की किन में अतात करनी है और किन में अतात नहीं करनी। वालदैन ने भी कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हुई होती है ना, उन्होंने भी जो है वो उम्र लगाई हुई होती है पूरी, ठीक है ना, इसमें कि कैसे जो है ना वो नाजायज काम को जायज बना करके पेश करना, ये कैसे करूंगी मैं, उन नाजायज को जायज बनाने के अंदर एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। और बच्चों को जो है वो बच्चों का काम था इल्म हासिल करना, उन्होंने इल्म नहीं हासिल किया तो इस वजह से वो अम्मी का हर काम जो है उसको जायज ही समझ रहे होते हैं। ठीक है, बहरहाल इतनी सारी तफसील की जरूरत खाली इसी जगह पेश आती रहती है कि हम इल्म हासिल करें जायज और नाजायज का। इसी वजह से बहशी देवर आपके सामने पढ़ लेते हैं हफ्ते में 45 40 50 मिनट के लिए कुछ, ताकि इल्म पता चले। बहरहाल नंबर 4, अगर उनको माली तआवुन की ज़रूरत हो तो उनकी दिल से खिदमत करो, अगरचे कि वो दोनों काफिर ही क्यों ना, काफिर अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह ताला के जो है वो नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाले। काफिर का क्या मतलब होता है, राइट, अल्लाह के कुरान का इनकार करने वाले, नबी का इनकार करने वाले, और अल्लाह के दीन को जो है वो बिल्कुल पसे, यानी बिल्कुल ही जो है ना वो पसे पुश डालना नहीं, बल्कि बिल्कुल इनकार कर देना कि नहीं मैं नहीं मानता इस हिदायत को, ऐसे इंसानों के लिए अल्लाह ताला का क्या हुक्म है कि उनकी दिल से खिदमत करो, है ना, उनकी जो है वो तो उनके साथ माली तआवुन भी करो, उनके साथ इज्जत एहतराम से भी पेश आओ। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के, राइट। हमारे साथ कोई ऐसा अमल करे जैसे कि काफिर परवरदिगार के साथ करता है, हम तो उसको जो है वो सांस तक न लेने दें, हमारा बस चले हम उसका गला घोट दें, राइट, लेकिन परवरदिगार ऐसा नहीं करता। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके हुकूक, उनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहो। क्या लिखा, माली तआवुन टिल व्हाट एक्सटेंट, उनको जिस्मानी तकलीफ से बचाने के लिए, जितना उनको जिस्मानी तकलीफ से बचाने के लिए आपके पास कि जितना है, ठीक है ना, यानी फर्स्ट एक्सटेंट इज, यानी आपकी फर्स्ट लिमिट क्या है कि आपके पास जितना है, ठीक है, तो आप उसी में से उनकी मदद करेंगे ना, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको कहते हैं अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर उससे उनकी कितनी हद तक मदद करेंगे उनको जिस्मानी तकलीफ से बचाने के लिए, ठीक है, जितना कर सकते हैं उतना उतना करेंगे। बाकी ये कि कर्जा लेना वगैरह, तो इसमें भी देखा जाएगा कि कर्जा भी ऐसा ऐसा लिया जाए जैसे कि आप अपने कभी घर बनाने के लिए कर्जा ले लेते हैं, कभी जो है वो गाड़ी खरीदने के लिए कर्जा ले लेते हैं, कभी जो है वो बेटे की शादी करने के लिए कर्जा ले लेते हैं। एक वालिदैन की जिस्मानी ज़रूरत और जिस्मानी तकलीफ से बचाने के लिए आप कर्जा नहीं ले सकते। अगर आप हर चीज़ के लिए कर्जा लेते हैं तो इसके लिए क्यों नहीं कर्जा ले सकते, उनको जिस्मानी अजियत से जिस्मानी तकलीफ से बचाने के लिए क्यों नहीं कर्जा ले सकते। और अगर आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कर्जा नहीं लेते तो फिर बात बनती है कि हाँ भाई मैं तो कर्जा नहीं लेती हूँ, तो मैं वालदैन मेरे पास इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वालदैन को जिस्मानी अजियत से बचाने के लिए मैं चाह रही हूँ कि कर्जा लिए बगैर ही बस किसी तरह से मैं उनकी खिदमत कर लूँ, ठीक है ना। तो वो तो उस वक्त बनेगा ना जब आप किसी काम के लिए कर्जा नहीं लेती हैं, ठीक है, वरना तो हर कर्जे पे कर्जा लिए चली जा रही है, बस एक वालदैन के लिए कर्जा ले रहे, ठीक है, अपना अफोर्ड करना उस ये लिमिट है, और दूसरी लिमिट ये है कि उनको जिस्मानी अजियत से बचाने के लिए। अच्छा, वालदैन के इंतकाल के बाद क्या EMI जायज है, मुझे नहीं पता EMI क्या चीज़ होती है। वालदैन के इंतकाल के बाद उनके हुकूक, उनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहो, नफिल इबादत और सदका व खैरात का सवाब उनको पहुंचाते रहो, ठीक है। अगर ईमान पे उनका खात्मा हुआ था, इसका क्या मतलब है ईमान पे खात्मा हुआ था का मतलब ये नहीं है कि आपने उनके मुंह से कलमा सुना था कि नहीं सुना था उनके मरने के बाद, बल्कि इसका मतलब ये है कि मरने के वक्त उन्होंने कोई सराहतन ऐसा काम या ऐसी बात नहीं करी थी जो कि किसी को काफिर बना देती है, तो फिर इसका मतलब यह होगा कि वो ईमान पे ही दुनिया से गए। आप यही गुमान रखेंगे वो ईमान पे दुनिया से गए। हाँ, सराहतन एक्सप्लिसिटली अगर मौत के वक्त किसी ने ऐसी बात कर दी जो कि इंसान को ईमान से खारिज कर देती है, तब फिर होता है कि भाई वो ईमान पे दुनिया से नहीं गया, काफिर होकर दुनिया से गए। लेकिन अगर ऐसे कोई बात नहीं करी है, चाहे उन्होंने कलमा पढ़ा हो चाहे उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वो ईमान ही की हालत में दुनिया से रुख्सत हुए हैं, हम उनके बारे में यही गुमान रखेंगे। बाकी तफसील अल्लाह को पता, हमें क्या पता, अल्लाह को मालूम है। तो ऐसे मुसलमान माँ बाप के लिए जिंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी नफिल इबादात सदका व खैरात का सवाब उनको पहुंचाते रहो। वैसे तो उलमा जो है वो मरहूम के लिए, जो दुनिया से जा चुका है ना, उनके लिए ज़कात और खैरात का सवाब पहुंचाने की इजाजत देते हैं, लेकिन इवन जायज सॉरी इवन जिंदा इंसान को भी जो है वो आप कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इसको सवाब जो है मेरे वालदैन को दे दें, ठीक है, वो भी दे दें। ये नहीं कि मुझे मत दें और उनको दे दें, नहीं, मुझे तो आप जो दे रहे हैं वो मेरे वालदैन को भी पहुंचा, ठीक है। अब खुसूसन मरने के बाद तो वो पूरे के पूरे फिर डिपेंडेंट होते हैं ना हमारे ऊपर, अब तो वो खुद अमाल कर ही नहीं सकते। अपनी औलाद को भी खुसूसन, माशाल्लाह बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक अता फरमाई अल्लाह ताला ने कि औलादों को हम हिफ्ज करवा रहे हैं, ठीक है ना, कुरान मजीद का हिफ्ज करते हैं। हम खुद इतना कुरान मजीद तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, या पढ़ पाते नहीं हैं, लेकिन जो औलादें हिफ्ज कर रही होती हैं, हिफ्ज कर चुकी होती हैं, वो तो माशाल्लाह रोजाना के हिसाब से उनको बहुत ज्यादा कुरान मजीद पढ़ना होता है ना, तो उनको भी याद दिलाते रहें वक्तन फवक्तन कि बेटा आप जो है ना वो जब अपने मंजिल पढ़ लिया करें, आप अपना सबक याद किया करें, सबकी सुनाया करें, आप उसके बाद जो है ना इस आले सवाब की दुआ भी कर लिया करें अपने नाना नानी के लिए, दादा दादी के लिए, कोई आपकी और जो भी रिश्तेदार दुनिया से हमारे चले गए उन सब के लिए इस आले सवाब की दुआ कर लिया कर, ठीक है। और खाली कुरान मजीद पढ़कर इस आले सवाब नहीं कर सक नहीं नहीं किया जाता, बल्कि इसके अलावा और भी तरीके हैं, सदका वगैरह दे करके भी कोई भी आप ऐसा कोई काम करें नेकी का काम, तो हर नेकी के काम का जो है वो इस आले सवाब किया जा सकता है। उनके दोस्त अहबाब के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, ठीक है, जितना मुमकिन है औकात वगैरह के हिसाब से। तो उनके जो दोस्त अहबाब थे इंतकाल के बाद उनसे हुस्ने सुलूक से पेश आओ, यानी उनको अकोमोडेट कर लें, उनकी जो है वो बात सुन लें, उनसे जो है वो बात कर लें वगैरह। नंबर 3, उनके जिम्मे जो कर्जा हो या किसी जायज काम की वसीयत कर गए हों तो उसको अदा कर दो, ठीक है। ये फिर जब किताबुल वसाया वसीयत के अहकाम वगैरह हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर दोबारा ये रिपीट होगा, तो उनके जिम्मे जो कर्जा है उसको अदा कर देना, ठीक है, ये उनकी वसीयत को जो है वो पूरा करना, ये भी उनके हुकूक में आता है। नंबर 4, उनके मरने के बाद खिलाफ शरा रोने और चिल्लाने से बचो वरना उनकी रूह को तकलीफ होगी। अच्छा, ये जो वसीयत और विरासत वगैरह का मामला है तो ये भी वालिदैन के हुकूक में से है ना कि उनके मरने के बाद उनकी जो विरासत है उसको तकसीम कर दिया जाए, उनके वरासा को जो है वो अदा कर दिया जाए, ठीक है। तो उनके यादगारें मना रहे हैं, उनकी तस्वीरें लटका रहे हैं, उनके जो है ना वो सोग मना रहे हैं, राइट, और उनकी जो बाकी बाकियात हैं उनको यानी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये मेरी वालदा की जो है ना वो फलानी चीज़ थी, ये मेरी वालदा वालिद का ये फलाना चीज़ था, उसको संभाल संभाल करके रख रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, राइट। लेकिन जो उनकी विरासत की तकसीम थी भाई बहनों माँ वगैरह को जो देना था वो नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये तो उनके हकूक आप नहीं अदा कर रहे, उनकी हकूक अदायगी के अंदर तो ये है भी नहीं कि उनकी बाकियात जो है ना वो उनको आप हार पहना पहना करके जो है वो सजाते फिरें, उन लोगों को दिखाते फिरें, ठीक है, ये तो सही भी नहीं है, बल्कि क्योंकि उनकी बाकियात तो है भी नहीं कुछ, ये तो बड़ा मुस्तकिल बात करने का मौजू है। वो तो जब दुनिया से चले गए तो उनकी तो बाकियात ख़त्म हो गई, अब उनकी मिल्कियत किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है, अब उनकी सारी की सारी मिल्कियत जो है वो उनके वरासा में मुंतकिल हो चुकी है, अल्लाह की तरफ से मुंतकिल हो चुकी है, ठीक है, अब उनकी मिल्कियत में कोई भी चीज़ बाकी नहीं है। तो ये जो हम है ना, ये मेरे अम्मी की यादगार है, ये मेरे अब्बू की यादगार हो, भाई यादगार क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है यादगार, जिस चीज़ को देख करके वो याद आए तो ठीक है, याद कर लिया करें किसी चीज़ को देख करके, लेकिन ये उनकी मिल्कियत नहीं है, ये उनकी मिल्कियत नहीं है, ये यानी मैं क्या कहूँ यार, तो नहीं समझ में आती हमारे यहाँ बात, ठीक है। यादगार होना एक अलग चीज़ होती है और मिल्कियत होना एक अलग चीज़ होती है। जब वो दुनिया से चली गई अम्मा, फॉर एग्जाम्पल, अब कल किसी से बात हो रही थी, पता नहीं क्लास में है कि नहीं है, कहीं माइंड ना कर जाए कि भाई वो अम्मी की सिलाई मशीन, राइट, तो अब सिलाई मशीन जो थी वो वालदा की थी, तो ये उनकी यादगार है। नहीं भाई बेटा, मतलब यादगार है वो सिलाई मशीन को देख करके आपको अपनी वालदा याद आ रही है, बेशक याद किया करें अपनी अम्मी को, तो उनकी सिलाई मशीन को देख करके, इससे हम मना नहीं कर रहे, नहीं, इससे एक शरीयत में आया, कौन होता हूँ मना करने वाला, शरीयत मना नहीं कर रही है इससे कि सिलाई मशीन को देख करके अम्मा को याद कर लिया करें, लेकिन सिलाई मशीन अम्मा की प्रॉपर्टी नहीं है, सिलाई मशीन अब अम्मा की मिल्कियत में नहीं है, ये सिलाई मशीन जो है वो वरासा की मिल्कियत में मुंतकिल हो चुकी है। फर्क समझ नहीं इन दो चीजों के दरमियान, नहीं समझ में आता ये फर्क हमारे, नहीं समझ में आता। वो समझते हैं कि अम्मा चली गई ना, तो जो सिलाई मशीन उन्होंने खरीद करके घर में रखी थी ना, वो अभी भी उन्हीं की है, राइट, नहीं उनकी नहीं है भाई, ठीक है। घर अब्बा ने घर बनाया था, तो फिर घर भी जो है वो आपके अब्बा की निशानी है, घर भी जो है वो अब्बा की यादगार है, क्योंकि अब्बा ने घर बनाया था, तो फिर विरासत में क्यों तकसीम करते हो, ये तो उन लोगों के लिए जो कि विरासत करते हैं, वरना तो वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तकसीम ही नहीं करते, राइट। तो अब जो है ना वो अब्बा का घर है, अब्बा ने बनाया था, मैं इसको तकसीम नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरे अब्बा की यादगार है, अल्लाह के बंदे, ये अब्बा की यादगार होना अलग चीज है, अब्बा की मिल्कियत होना एक अलग चीज है, ये अब्बा की मिल्कियत नहीं है, ये अब्बा की मिल्कियत नहीं है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग जरा दीनदार भी हो जाते हैं ना, तो कहते हैं कि हाँ ये बात तो है कि दुनिया की कोई चीज कब्र में साथ नहीं ले जा सकते, राइट, लेकिन है तो ये उन्हीं की ना, नहीं है उनकी, यानी कब्र में नहीं ले जा सकते का मतलब क्या है कि अगर इनके लिए मुमकिन होता तो शायद कब्र के अंदर ही जो है ना वो अपना घर साथ लेकर के जा रहे होते, या अम्मा के लिए अगर मुमकिन होता तो अपनी सिलाई मशीन जो है ना वो कब्र में भी लेके जा रही होती, क्योंकि ये उनकी है। जैसे कि बहरेन के अंदर, आप में से कोई अगर बहरेन में रहता हो तो उसको पता होगा कि बहरेन में जो है ना वो, ये जो मुल्क बहरेन है सऊदी अरब के बराबर में, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं, ठीक है, तो उन कब्रिस्तानों की खास बात यह है कि उनमें जो कब्रें हैं ना वो टीलों की शक्ल में, बड़े बड़े टीलों की शक्ल में कब्रें हैं, टीले समझते हैं ना, माउंड जिनको कहते हैं, राइट। एहराम मिस्र तो सबको ही पता है ना, एहराम मिस्र के बारे में, बहरेन के बारे में तो सबको पता भी नहीं होगा। एहराम मिस्र क्या है कि जो बादशाह मरता था ना, ठीक है, या मलका मरती थी ना, तो उसकी जितनी चीजें होती थी वो अपने साथ कब्र में लेकर के जाते थे, उसकी कब्र में डाल देते थे, उसके ऊपर एहराम बना देते थे। उसी तरह उसमें, खैर उसमें थोड़ा सा तामुल है कि पता नहीं उसमें सारी चीजें डालते थे कि नहीं, लेकिन बहरेन में जो कब्रें हैं, कब्रिस्तान हैं, माउंड्स ऑफ बहरेन उनको कहते हैं, तो वहां पर यही तसव्वुर है कि जितनी उसकी साजो सामान होता था, घर की चीजें होती थी, वो सारा उसके कब्र के अंदर रख देते थे और उसके ऊपर मिट्टी का एक टीला बना देते थे। वो आज भी मौजूद है ये, और ये बहुत, यानी ये पता नहीं कई हजार साल पहले की कब्र है ये, ठीक है। तो कब्र में ले जाना मुमकिन तो है, जैसे वो लोग लेके गए थे, आज जो है वो हम भी जो है वो चूंकि विरासत के इनकारी हैं, तो अब हम भी कब्रों के अंदर जो है वो सिलाई मशीनें डालते फिरे, नहीं ये किसी का घर भी कब्र के अंदर ले जाए, क्योंकि है तो उन्हीं की मिल्कियत, नहीं उनकी मिल्कियत नहीं है ये, ना सिलाई मशीन अम्मा की मिल्कियत है, ना घर जो है वो अब्बा की मिल्कियत है, खत्म हो गया उनकी मिल्कियत, उनकी मिल्कियत खत्म हो गई, जैसे हमारी खत्म हो जाएगी, खाली उनकी खत्म नहीं हो गई, हमारी भी खत्म हो जाएगी, मेरी और आपकी भी खत्म हो जाएगी, राइट। हत्ता के जिस्म के ऊपर जो लिबास पहने हुए हैं ना, ये लिबास भी हमारी मिल्कियत में नहीं रहेगा। फ्रिज और डीप फ्रीजर तो दूर की चीजें, इवन जो आप कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े भी आपकी मिल्कियत में नहीं रहेंगे, बल्कि ये वारिसों की मिल्कियत में मुंतकिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस मिल्कियत को जो है ना, वो उनके हवाले कर देना, वारिसों की जो मिल्कियत बन चुकी है, उनको उन वुरसा के हवाले कर देना, राइट। इससे वालदैन को खुशी भी होगी, उनको इल्म होगा, उन तक बात पहुंचेगी कि हाँ वुरसा के अंदर तकसीम हो चुकी है ये। ठीक है, वो खुश भी होंगे और उनके यानी सवाब भी मिलेगा उनको, यकीनन। तो उनके जिम्मे जो कर्जा हो या किसी जायज काम की वसीयत कर गए हो, तो उसको अदा कर दो। देखें, ये वालदैन के हुकूक में लिखा हुआ है कि उनको अदा कर दो। सही, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कि उनको सवाब मिलेगा या उनको फायदा होगा या उनको खुशी होगी, उनके हुकूक में ये हमारे मशायख ने इस बात को लिखा है ना। ठीक है, बहुत से लोग कपड़े गरीब को दे देते हैं और जायदाद खुद रखते हैं, अपनी मर्जी से अपनी मिल्कियत उठा के गरीब को देते, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि वो अब आपकी मिल्कियत हो चुकी है। लेकिन जो भाई की मिल्कियत हो चुकी है, वो भाई की इजाजत के बगैर तो नहीं आप उनको उठा करके गरीब को दे सकते हैं, क्योंकि अब तो वो भाई की मिल्कियत है। आप जाए ना जा करके भाई के घर के अंदर या बहन के घर के अंदर जाए, और वहां पे उनके वार्डरोब खोलें और कहें कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके वार्डरोब में से ना ये जितने भी कीमती कपड़े हैं ना, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गरीब में बांट दूं, तो आपकी बहन क्या कहेंगी आपको, ये तुम्हारे कपड़े हैं क्या, ये तुम्हारी मिल्कियत है, ये तुम्हारा वार्डरोब है, कि तुम जो है वो आकर के मेरे कपड़े निकाल करके कह रही हो मैं गरीब में सदका करना चाहती हूँ इसको। भाई तुम अपने कपड़े करो सदका, मेरे कपड़े क्यों सदका कर रही हो, राइट। तो वालिदैन साहब जो मर गए ना, तो अब उनकी मिल्कियत खत्म, अब सदका उनकी तरफ से नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मिल्कियत ही कोई नहीं। अब तो ये बहन की मिल्कियत, भाई की मिल्कियत, माँ की मिल्कियत, राइट। तो अब अगर आपको सदका करना है, तो बहन से पूछें कि बहन आप अगर करना चाहती हैं तो कर दें, बड़ी अच्छी बात है, आपको सवाब मिलेगा। उसकी मर्जी, वो कहेगी मैं करना चाहूंगी तो मैं खुद कर दूंगी, तो मैं क्या तकलीफ हो रही है।
हाँ
बहरहाल, चौथा ये जो था ना, कि मरने के बाद खिलाफ इशारा रोने, यानी जोर आवाज से रोने, आंसू बहाना, ये शरीयत में जायज है। आंसू बहाना शरीयत में जायज है, और आंसू बहाने से ज्यादा आवाज निकालना, मारना पीटना, अपने आप को मार रहे हैं, दूसरे को क्या मारेंगे, अपने आप को मार रहे होते हैं, ठीक है, या मातम कर रहे होते हैं जिस तरह ये शिया लोग करते हैं, ये सब खिलाफ इशारा है, शरीयत के खिलाफ है, ठीक है। उनकी रूह को तकलीफ होगी, इसके ऊपर उलमा ने लिखा है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी वसीयत नहीं करी थी कि मेरे बाद जो है वो मातम वगैरह का इंतजाम किया जाए, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात कि अगर उन्होंने इस बात को अपनी औलाद में, एक होता है ना, आपने जुबान से वसीयत करी कि मेरे बाद रोना धोना, एक होता है कि आप जुबान से तो वसीयत नहीं कर रहे, लेकिन आपका अपना ही अमल ऐसा है कि आप अपने बड़ों के मरने के ऊपर रोना धोना किया करते थे, मारा पीटा किया करते थे, कपड़े फाड़ा किया करते थे, अब आपकी औलाद ने आपको देख करके सीखा है ये वाला काम, राइट। आपकी औलाद ने सीखा इस इन चीजों को आपको देख करके, अब आपके मरने के बाद जब वो ये काम कर रहे हैं, तो फिर आपको तकलीफ होगी, फिर आपको तकलीफ होगी। बेशक आपने जुबान से उनको नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद तुम रोना धोना, नहीं कहा जुबान से, लेकिन अमल से तो आपने उनको यही बात सिखाई है ना, ठीक है। या ये कि तीसरी सूरत क्या हो सकती है, कि आपकी औलाद जो है वो आपकी रईयत है, ठीक है ना, तो उसको गलत और सही सिखाना ये भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपकी रईयत है। अब अगर आप अपनी औलाद को देख रहे हैं कि वो कहीं और से ये चीजें सीख रही है, कहीं और से इन चीजों को सीख रही है, तो ये आपका काम है उसको मना करना, उसको समझाना कि नहीं ये गलत काम है। लेकिन आपने कहा हु केयर्स, मैनू की, मैं क्यों बताऊं उसको कि गलत किया है गलत सही किया है, सीख रही है तो सीख रही है, उसकी मर्जी। तो उसने कहीं से रोना पीटना सीख लिया दूसरों को देख करके, जैसे उनका कोई शिया दोस्त था फॉर एग्जाम्पल, राइट, आपकी औलाद ने शिया दोस्त बना लिया। अब शिया दोस्त जो है ना वो मातम के ऊपर जो है वो आपकी औलाद को लेकर के जाता है, आपकी औलाद जो है वो उसके मातम को देखती है और उसको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब आपने इसकी फिक्र ही कोई नहीं करी कि मेरे मेरे बेटे की या मेरी बेटी की दोस्त जो है वो शिया बन गई है, अब वो मातम को देखती है, वो उनसे मातम करना सीख रही है, बहन करना सीख रही है, आपने इसकी कोई फिक्र नहीं करी, आपने अपनी औलाद को नहीं समझाया कि ये बात गलत है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करी आपने। तो अब अगर आपके मरने के बाद वो आपके ऊपर भी रोधो और मातम शातम टाइप की चीजें कर रही है, फिर तकलीफ पहुंचेगी, फिर तकलीफ पहुंचेगी, यानी कब्र में तकलीफ पहुंचेगी, ठीक है। तो तकलीफ पहुंचने की ये सूरतें हैं, और अगर ऐसा आपने कोई गलत काम नहीं किया, वो अपनी मर्जी से ही सारा काम कर रही है, और आपने ना उनको तरगीब दी ना आपने जो है वो उनको गलत से रोकने से इज्तनाब किया, कोई आपने गलत काम नहीं किया, तो फिर आपको तकलीफ नहीं पहुंचेगी, माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचेगी मरने के बाद। अच्छा, दादा दादी नाना और नानी का हुक्म शरीयत में माँ बाप जैसा है उनके हुकूक को भी माँ बाप के हुकूक की तरह समझना चाहिए, इसी तरह खाला और मामू माँ के हुक्म में और चचा फूफी बाप के हुक्म में हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाप तो जिंदा मौजूद हैं उनको छोड़ करके जो है वो फूफा और चचा की खिदमत कर रहे हैं बाप की नहीं कर रहे, ये मतलब नहीं है, या माँ मौजूद है माँ को छोड़ करके जो है वो खाला की कर रहे हैं, राइट, माँ की नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि माँ की जब कर ली तो उसके बाद फिर खाला की भी करें, ठीक है। और दूसरों यानी जिनका लिखा हुआ है यहाँ पे, या ये कि माँ दुनिया से चली जाए तो फिर खाला जो है वो उनकी ऐसे करेंगे जैसे कि माँ की जाती है, लेकिन माँ मौजूद है बाप मौजूद है तो फिर उनको छोड़ कर थोड़ी भैया, माशाल्लाह किसी की 7 खालाएं हैं, किसी की 5 खालाएं हैं, ठीक है ना। अब बाप में अगर कोई इतना मसरूफ है या माँ के अंदर इतना मसरूफ है कि भी खाला खालों को जो है वो फोन करने का मौका नहीं मिल रहा है उनकी जो है वो हर वक्त, तो फिर कम से कम अपने बाप की तो कर रहे हैं ना, अपनी माँ की तो कर रहे हैं ना, ठीक है। सौतेली माँ के बारे में फरमाते हैं कि सौतेली माँ चूंकि बाप की बीवी है इसलिए उसके हुकूक भी माँ की तरह समझने चाहिए, ठीक है। बड़ा भाई हदीस शरीफ में है कि बड़ा भाई बाप के दर्जे में है, इससे मालूम हुआ कि छोटा भाई औलाद के हुक्म में है, बस उनके आपस में वैसे ही हुकूक होंगे जैसे माँ बाप और औलाद के हैं, ऐसा ही बड़ी बहन और छोटी बहन को समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो शरीयत ने कितनी यानी तस्वुर करें कि जो शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा तो उसकी इनफरादी और घरेलू और ख़ानदानी और मुआशरती ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी ना, ठीक है। और जिसने शरीयत को परे रख दिया और या उसको जो है ना वो सेलेक्टिवली कि भाई मैं शरीयत से जो है ना वो चंद इबादात के तरीके तो लूँगा और चंद जो है वो चीज़ों को लूँगा और बाकी चीज़ों को मैं छोड़ दूंगा, इबादात लूँगा मुआमलात नहीं लूँगा, राइट, अखलाकियात जो है वो मैं शरीयत से नहीं लूंगा बल्कि मैं किसी और कल्चर से लूंगा, तो इस किस्म का जो मिक्सिंग एंड मैचिंग वाला ही वाला दीन बन जाएगा तो फिर उसमें तो सारी खूबसूरतियां नहीं होंगी, जाहिर सी बात है उसके अंदर फिर वही होता है कि बड़े बड़े दीनदार लोग जो है ना वो बड़े बड़े जो है ना वो खानदानी झगड़ों का भी नमूना बन जाते हैं, जैसे कि आजकल बहुत आम है ये कि इतने दीनदार की जैसे वो क्या कहते हैं फरिश्ते वजू करें, उनका दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें, इतना पर्दा इतना काला बुरका और इतना जो है वो लंबी दाढ़ी और सब कुछ, लेकिन घरों के हालात देखो तो एक एक ने दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, दूसरे ने एक इसकी जो है वो कमर मरोड़ी हुई है, किसी ने उसका हाथ मरोड़ा हुआ है, राइट, और अजीब व गरीब किस्म के जो है ना वो फड्डे चल रहे होते हैं घरों के अंदर, और बाहर से देखो तो वो लगता है जी ये तो हया और पाक दामनी और जो है ना वो सुन्नत की इत्तबा के अंदर इनसे तो कोई बड़ा हो नहीं सकता, ठीक। तो भाई दुनिया वाले जो भी समझते रहे आपके बारे में, लेकिन हिसाब तो दुनिया वालों के सामने नहीं देना है, राइट, हिसाब तो परवरदिगार के सामने देना है। और परवरदिगार जो है ना, वो ना सिर्फ घर के जाहिरी उमूर को जानता है, बल्कि आपके दिनों के अंदर के हालात को भी जानता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर हमारे समझ में आ जाए हमारे मसले वाकई हल हो जाए, चाहे दूसरों के मसले हल हो या ना हो, हमारा अपना जाती मसला हल हो जाए और अपनी हमारी अपनी जो है ना, वो आखिरत संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। क्या लिखा है उन्होंने कि माँ के मरने के बाद खाला की कैसी खिदमत करें जबकि वो दूर भी रहती हो, कॉल कर उनसे हाल पूछ लिया जाए, उनको कुछ जरूरत हो तो भेज दिया जाए। जी ये सही है। जब आपकी शादी हो गई थी तो आप किसके साथ रहती थी, शौहर के साथ या माँ के साथ? शौहर के साथ रहती थी, तो माँ तो दूर ही रहती थी ना आपकी, तो कैसे उनकी खिदमत करती थी? ठीक है ना, तो जिस तरह दूर मार रहती थी उसकी आप जिस तरह से फोन पे बात कर लिया करती थी, जरूरत थी तो भेज दिया करती थी, उसी तरीके से खाला भी दूर रह रही है, ठीक, तो उसका भी फोन पे खैरियत मालूम कर लिया करें उनकी भी, और उनको भी कुछ दे दिया करें, भेज दिया करें जब उनकी जरूरत हो कोई भी ऐसी चीज। क्या सिया से दोस्ती रखना सही है? क्या सिया से दोस्ती, शिया से दोस्ती रखना सही है? शिया, शिया SH जो है ना, वो शीन की आवाज निकलती है, तो शिया से दोस्ती रखना जो है वो सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं, बहुत खतरनाक। ठीक है, उलमा ने, अक्सर उलमा ने सराहतन शिया को जो है वो काफिरों में लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर काफिरों में नहीं भी लिखा ना किसी ने, अगर अगर कोई किस्म का शिया जो है काफिर नहीं भी है, तो भी बदअकीदा होने के ऊपर तो सारे उलमा मुत्तफिक हैं, बदअकीदा। ठीक है, तो बदअकीदा के साथ दोस्ती रखना ये तो बिल्कुल भी सही है। ठीक है, लोग, अच्छा हिंदू होगा तो आप उसको काफिर समझेंगे, ठीक है ना, ईसाई होगा तो उसको आप काफिर समझेंगे, लेकिन शिया को तो जब दोस्तियां बनती हैं ना, तो शिया को तो लोग बहुत बड़ा मुसलमान और बहुत अच्छा वाला मुसलमान समझ के दोस्त बनाते हैं, तो फिर तो बिल्कुल ही ईमान यानी जद पे आ जाता है ना उस वक्त, तो फिर बहुत ही बुरा मामला हो जाता है। ठीक है, अपने लड़कों को तो खुसूसन शिया लड़कियों से बचाएं, क्योंकि शिया लड़कियां जो होती हैं ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, उनके उनके यहाँ ये पर्दा वर्दा भी जो है ना, वो भी बड़े उसके तमाशे हैं, बड़ा उसके दूसरे किस्म के मसले, तो बहुत ज्यादा सुन्नी लड़के जो हैं वो शियाओं के दाम दाम में फंसते हैं, और बहुत बड़ा फिर उसका मसला बन जाता है। अच्छा ठीक है, बस क्लास यहाँ पे ख़त्म करनी है। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।